हाशिया लाला मुरलीधर साहेब ड्राइंग मास्टर ने 14 मार्च 1886 के जलसे बहस में, जिसमें रातिन रिसाला हाजा का हक था कि पहले अपना एतराज़ पेश करे, वक्त को नाहक ज़ाय करने के लिए 11 मार्च 86 के बहस के मुतालिक एक फजूल झगड़ा शुरू कर दिया और चंद सतरें मंदरजा ज़ैल लिख कर और उन पर अपने दस्तखत कर कर जलसे आम में एक बड़े जोश से खड़े होकर सुनाई, और वो ये हैं। आज पहले इसके कि मैं कोई नया सवाल पेश करूं, मिर्ज़ा साहेब की पहले रोज़ की तकरीर में से वो हिस्सा जो उन्होंने फरमाया है कि सत्यारत पर काश में लिखा है, रूहें औस वगैरह पर फैलती हैं और औरतें खाती हैं तो आदमी पैदा होते हैं, पेश करता हूँ। ये सत्यारत पर काश में किसी जगह नहीं, अगर है तो सत्यारत पर काश मैं देता हूँ, उसमें से निकाल कर दिखलावें ताकि सच और झूठ की नरती लोग कर लें। 14 मार्च 1886 मुरलीधर ड्राइंग मास्टर। इसके जवाब में अव्वल तो मैंने ये कहा कि पहले रोज़ की तकरीर उसी रोज़ के साथ ख़त्म हुई, आप पर लाजिम था कि उसी रोज़ झगड़ा शुरू करते, अब ये क्यों कर इस जलसा बहस में तहरीक के लायक नहीं, बल्कि अज़ कबील मुश्ते के बाद अज़ जंग याद आमद, कि वो मुक्का जो जंग के बाद याद आए है। अगर आपको 4 रोज़ की बात अब जाकर सूझी है तो आप बर वक्त शाये करने अपने मजमून के बतौर खुद लिख दें कि ये हवाला गलत है, फिर देखा जाएगा। और मैं अब भी किताब निकाल कर दिखला देता, लेकिन मुझे पता याद नहीं और ना मैं नागरी पढ़ सकता हूँ। ये सब उजरात सुनकर मास्टर साहेब ने सरासर मकाबिरा की राह से इसी पर ज़िद करना शुरू किया कि जब तक उसका तस्फिया ना हो ले दूसरी गुफ्तगू नहीं कर सकते। मिस्टर मौलवी इलाही बख्श साहेब वकील ने भी उन्हें बहुत समझाया कि इस मौके पर गुज़श्ता किस्सों को ले बैठना बेजा है, आज के दिन आज ही की बहस होनी चाहिए। भला इतनी बड़ी किताब जिसका पता व मकाम ख़ास याद नहीं, अगर किसी से पढ़ाई भी जाए तो क्या 2-4 रोज़ से कम में ख़त्म हो सकती है? इसके जवाब में लाला साहेब ने तुंद होकर उनको फरमाया कि क्या आप अदालतों में ऐसी ही वकालतें किया करते हैं, ये रियायत की बात है। गरज जब देखा गया कि खुदा ने मास्टर साहेब की कुछ ऐसी ही समझ रखी है कि वो बहरहाल अपने उल्टे को सीधा और दूसरे के सीधे को उल्टा ख्याल करते हैं, तो किस्सा कोताह करने की गरज से उनको कहा गया कि जब हम ये बहस शाये करेंगे तो इस मकाम पर सत्यारत पर काश का हवाला भी ज़रूर लिख देंगे। चुनाचे मास्टर साहेब ने जब तक ये इकरार तहरीरी ना लिखा लिया तब तक सब्र ना आया। सो आज वो रोज़ है जो हम इस वादे को पूरा करें और देखें कि मास्टर साहेब किस कदर इंसानी गैरत को काम में लाकर शर्मिंदा और मुनफ़िल होते हैं। लेकिन अव्वल इस बात का खोल देना आज बस ज़रूरी है कि जिस हालत में सत्यारत पर काश में वो मजमून जिसका हवाला दिया गया था साफ दर्ज था, तो फिर क्यों मास्टर साहेब ने उसके इंदराज से साफ इनकार किया और उसके मुतालबे में इस कदर बेजा ज़िद की कि बहुत से वक्त को खोया, जिससे हमारा हक बिलमुकाबिल एतराज़ करने का बहुत सा ज़ाया हुआ। इसका सबब 3 में से 1 है, या तो ये कि अभी मास्टर साहेब को अपने मज़हब की किताबों की कुछ खबर ही नहीं, सिर्फ देखा देखी बहस करने का शौक़ हो गया है, या दूसरा सबब यह भी हो सकता है कि खबर तो थी लेकिन ख़यानत की राह से दूसरों के बहकाने में और धोखा देने के लिए एक अमरे हक को छुपाना चाहा है, या यूँ भी कह सकते हैं कि इस किस्म के झूठे और लगव मसाइल का हतुल वसा लोगों के रूबरू ज़ाहिर ना करना पंडित दयानंद की तरफ से बतौर वसीयत फहमाइश है जिस पर उनके पैरव अमल कर रहे हैं, और ये आखिरी सबब करीने कयास है। और यही वजह थी कि मास्टर साहेब ने अपना तमाम जोश इसी में खर्च किया कि ऐसा नालायक मजमून और ऐसा बातिल ख्याल सत्यारत पर काश में हरगिज़ नहीं है और न पंडित दयानंद साहेब की शान के लायक है कि ऐसी अहमकाना बातें उनकी कलम से निकलें। मगर शुक्र है कि आखिर चोर पकड़ा गया और इस जगह मास्टर साहेब को भी मालूम रहे कि पंडित साहेब की ये एक नई गलती नहीं بلکہ ان کی اکثر تحریریں ایسی ہی ہیں کہ جن کو غلطستان کہنا چاہیے۔ ان کی فطرت ہی کچھ ایسی واقعہ تھی کہ باریک باتوں تک ان کی عقل نہیں پہنچ سکتی تھی، اور خالص اور مغشوش دلائل میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، بعض اوقات پیچھے سے وقت گزرنے کے بعد سمجھ بھی جاتے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی، مگر وہ سمجھنا کچھ اپنی لیاقت سے نہیں بلکہ لوگوں کے اعتراضات بارش کی طرح چاروں طرف سے برس کر متنبہ کرتے تھے۔ اور اسی نقصان فہم کی وجہ سے پنڈت دیانند کا اپنی تمام زندگی میں یہ طریق رہا ہے کہ اول ایک بات کا دعویٰ کرنا کہ یہ مسئلہ وید کا ہے اور ہمارے ویدوں میں یوں ہی لکھا ہے، اور پھر اس کو کسی رسالہ وغیرہ میں چھپوا دینا، اور پھر جس وقت دانش مند لوگ اس پر اعتراض کر کے اس کا باطل ہونا کھول دیں اور لاجواب کر دیں، تو پھر اس مسئلے سے گریز کر جانا، تو یہ عذر پیش کر دینا کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ہمارا قصور نہیں ہے بلکہ صاحب کاتب ہے۔ چنانچہ پہلے انہوں نے اپنی ستیارت پرکاش میں، جو وید بھاش کے مشتہد کرنے سے پہلے لکھی گئی ہے، صفحہ 42 میں لکھا تھا کہ پتھروں میں سے جو کوئی جیتا ہو اس کا ترپن نہ کرے، اور جتنے مر گئے ہوں ان کا تو ضرور کرے، اور اس پر چند فوائد اور دلائل بھی بیان کیے تھے، لیکن پھر مدت کے بعد انہوں نے اشتہار دیا کہ یہ صاحب کاتب ہے۔ گویا کاتب نے اپنی طرف سے ایک صفحہ ما دلائل و فوائد لکھ مارا، اور پنڈت صاحب سوئے رہے، انہیں کچھ خبر نہیں۔ یہ شاید عرصہ 12 سال کا یا کچھ کم و بیش ہوا ہوگا کہ پنڈت صاحب نے ایک اشتہار اپنا دستخطی کاہنپور میں مستحق کیا تھا کہ 21 شاستر ایشر کر، یعنی خدا کا کلام ہے۔ پھر رفتہ رفتہ جیسے شاستروں کی خوبیاں پنڈت صاحب پر کھلتی گئیں، ان کو انسان کا کلام سمجھتے گئے، یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصے میں 4 وید ایشر کرت رہ گئے اور باقی سب انسانی کتابیں ٹھہرائی گئیں۔ پھر اس کے بعد ویدوں کا حصہ جس کو برہمن کہتے ہیں ان کی نظر میں صحیح ثابت نہیں ہوا، تو آخر اس کو بھی ایشر کرت سے باہر کر دیا، اور صرف اس کے دوسرے حصہ سنگتا منتر بہاگ کو الہامی سمجھا گیا۔ کاش پنڈت صاحب 1-2 سال اور بھی جیتے، تا ان نو خیال آریوں کو چاروں ویدوں سے بھی آزاد کر جاتے، تھرون وید کا قصہ تو جلد پاک ہو جاتا، کیونکہ اس کی نسبت تو پہلے ہی بعض ہندوؤں کا خیال ہے کہ وہ برہمن پستک ہے، اور 3 ویدوں میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ خیر، یہ جھگڑا ہمارے اس وقت کے بحث سے متعلق نہیں، صرف یہ ظاہر کرنا تھا کہ پنڈت دیانند قائم الرائے آدمی نہیں تھا، اور فطرت سے ان کو ایک موٹی عقل ملی تھی جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی باتوں کو تو کیا سمجھتے، اپنی رائے کے آخری نتائج سے بھی اکثر بے خبر رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے خیالات ایک ہی مرکز پر قائم نہیں رہ سکتے تھے۔ اوائل میں ان کی یہ رائے تھی کہ تناسخ باطل ہے، چنانچہ یہ رائے ان کی ایک مرتبہ وکیل ہند امرتسر میں بھی چھپی تھی۔ پھر اسی اخبار میں لکھا تھا کہ اب پنڈت صاحب فرماتے ہیں کہ اب میں نے عقیدہ تناسخ کو اختیار کر لیا ہے، وہ پہلے نہیں تھا۔ پھر چاندہ پور کے مباحثے پر، جو ان کی طرف سے ایک رسالہ نکلا تھا، اس میں انہوں نے مفتی جاویدانی کا صاف اقرار کیا تھا، چنانچہ اب تک رسالہ موجود ہے، اور جب سوال کیا گیا کہ اگر مفتی جاویدانی ہے تو پھر روح کسی نہ کسی دن مفتی پا کر ختم ہو جائیں گے، کیونکہ پرمیشر میں تو یہ قدرت ہی نہیں کہ کوئی روح پیدا کر سکے، اس کے جواب میں انہوں نے اپنے چیلوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ روح بے انت ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھر جب ہم نے اخبار وکیل ہند میں مستحق کیا کہ کیا پرمیشر بھی جانتا ہے یا نہیں کہ اس قدر روح ہیں، تو یہ جواب ملا کہ روحوں کی تعداد کی پرمیشر کو بھی خبر نہیں، اس کی بے خبری سے ہی یہ سارا انتظام دنیا کا چلا جاتا ہے۔ پھر جب لوگوں نے اس اعتقاد پر بہت ہنسی کھٹھا شروع کیا، تب پنڈت صاحب تنگ اور لاچار آ کر دوسری طرف الٹے اور فرمایا کہ ہاں، روح تو بے انت نہیں ہیں، مگر یہ بات سچ ہے کہ کسی کو اوتار ہو یا رشی ہو، کوئی ہو، ہمیشہ کی نجات نہیں ملے گی، اور کیسا ہی کوئی اعلیٰ درجے کا نیک اور عاشق الہی ہو جائے، مگر تب بھی جونوں کی دائمی بلا سے اس کو مخلصی نہیں ہوگی۔ پرمیشر تو رحیم ہی تھا، مگر وہ بیچارہ کیا کر سکے، ہمیشہ کی نجات دینا اس کی قدرت سے باہر ہے، کیونکہ وہ کسی روح کو پیدا نہیں کر سکتا، اس کی ساری بدنامیوں کی جڑ یہی ہے۔ غرض، پنڈت صاحب کی کاروائیوں میں اس قسم کی خیانتیں بہت تھیں کہ ایک بات کو اپنے منہ سے نکالنا یا چھپوا دینا، اور جب اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو فی الفور منکر ہو جانا، और फिर तबाशुदा किताब की तरमीम करके दूसरी किताब छपवाना। अब हम असल मकसूद की तरफ रुजू करके इस हथियारत पर काश का वो मकाम लिखते हैं जिसके लिखने का मास्टर मुरलीधर साहब को वादा दिया गया था, और वो ये है, हथियारत पर काश 1875 आठवां समोल्लास सफ़ा 263। सवाल, जन्म और मौत वगैरह किस तरह से होते हैं? जवाब, लिंग शरीर यानी जिसमें दकी रूह और सथूल शरीर जिसमें कसीफ बाहम मिलकर जब जाहिर होते हैं तब उसका नाम जन्म यानी पैदाइश होता है, और दोनों की अलहदगी से गायब हो जाने को मौत कहते हैं। सो इस तरह से होता है कि रूह अपने आमाल के नताइज से गर्दिश करती और अपने अफ़ाल की तासीर से घूमते हुए पानी या किसी अनाज या हवा में मिलती है। फिर जब वो पानी या किसी बूटे वगैरह के साथ मिल जाती है तो जैसे जिसके अफ़ाल का असर यानी जितना जिसको सुख या दुख होना ज़रूरी है खुदा के हुक्म के मुआफिक वैसी जगह और वैसे ही जिस्म में मिल के शिकम मादिर में दाखिल हो जाती है। फिर जब हैवान या इंसान में वो ग़िज़ा के साथ अंदर चली जाती है उसके जिस्म के हिस्से की कशिश से उसका जिस्म बनता है। उसी तरीके से जो परमेश्वर ने मुकर्रर कर रखा है रूह निकलने के बाद आफ्ताब की किरणों के साथ ऊपर को खींची जाती है और फिर चाँद के नूर के साथ औस की तरह ज़मीन पर किसी बूटी वगैरह पर गिरती है। फिर बमूजिब तरीका मस्कूरा बाला जिस्म इख्तियार करती है। ये पंडित साहेब की इबारत है जो हमने सत्यारत पर काश से निकाल कर इस जगह लिखी है। अब हम मास्टर साहेब से पूछते हैं कि क्यों साहेब अभी सच और झूठ की नरती हुई या नहीं, इस वक्त ज़रा आप फरमाएं तो सही कि आपके दिल का क्या हाल है, क्या वो आपका कौल सच निकला कि मज़मून मस्कूरा बाला सत्यारत पर काश में किसी जगह नहीं। अफसोस, उस रोज़ नाहक आपने हमारे औकात को ज़ाय किया और अपनी इल्मी हैसियत का पर्दा फाड़ा और आज आप ही झूठे निकले। हर के बाद सादिका आवेख आबरूए खुद रेख, यानी हर कोई जो सादिकों से टक्कर लेता है अपनी इज्जत को आप गिराता है। अब आप सोच लें कि आपके पंडित साहेब वेद दान ने कैसा एक नाक़िस ख्याल खिलाफ अक्ल व खिलाफ तजारब तबी व तबाबत ज़ाहिर किया है। तमाम उकला जानते हैं कि रूह का ताल्लुक सिर्फ बच्चे की वालदा से नहीं होता बल्कि वालिद और वालिदा दोनों से होता है, और रूहानी अखलाक का इफाज़ा बच्चे के वजूद पर वालिदैन की तरफ से होता है ना उनमें से एक की तरफ से। हाँ, अगर पंडित साहेब ये किसी बूटी वगैरह पर गिरती है जिसको मर्द और औरत दोनों खा लेते हैं और दोनों मनियों में रूह का अर्क मखलूत हो जाता है तब भी कुछ बात थी, मगर इस जगह ये शुबा पैदा होगा कि क्या रूह आधी आधी होकर गिरती है, और अगर ऐसा ही है तो फिर दो टुकड़े होने के बाद उसका पैवंद क्यों कर हो जाता है। गरज पंडित साहेब अपने इस बातिल एतिकाद से अजब हैस बैस में अपने पसमानदगों को फंसा गए हैं और वेद के फ़लसफ़े का अजीब एक नमूना दिखा गए। और हम इस जगह ये भी बयान करना चाहते हैं कि पंडित दयानंद साहेब का ये एतिकाद कि रूह जिस्म है ये भी सरासर गलत और फासिद है। रूह हरगिज़ जिस्म नहीं है, जिस्म किस्मत को कबूल करता है और रूह काबिल इंकसाम नहीं। और अगर ये कहो कि वो जुज ला या तजज़ा है यानी परमाणु पर करती है तो इससे लाजिम आता है कि कई रूहों को बाहम जोड़कर एक बड़ा जिस्म तैयार हो जाए जिसको देख सकें और टटोल सकें, क्योंकि जुज ला या तजज़ा जिसको आर्या लोग पर करती या परमाणु कहते हैं यही खासियत रखती है, जैसे पंडित साहेब आप ही कायल हैं कि अजसाम कसीफ परमाणु के बाहम मिलने से तैयार होते हैं। मगर क्या पंडित साहब का कोई शागिर्द ऐसा जिस्म हमको दिखा सकता है जो 2-4 हज़ार या 2-4 लाख या किसी और अंदाज़े पर रूहों के बाहम मिलने से तैयार हो गया हो और देखने और टटोलने में आ सकता हो? तो ये दयानंद साहब का पोच ख्याल है कि रूह भी परमाणु ही है। मासिवा इसके हम ये भी कहते हैं कि जुज ला यु तजज़ा दलाइल अक़लिया और हिंदसिया से बातिल है, और इसके ताल पर एक आसान दलील ये है कि अगर जुज ला यु तजज़ा यानी परमाणु पर करती को दो चीज़ों के दरमियान रखा जाए तो ज़रूर है कि वो दोनों चीज़ें अतराफ़ मुखालिफ से उसको मस करेंगी, और ये अमर तकसीम को साबित करने वाला है। दूसरे ये कि नुक्ता भी जुज ला यु तजज़ा है, और बमूजिब उसूल मौजूआ इल्म हिंसा के हमको इख्तियार है कि एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक ख़त मुस्तकीम खींच लें। मसलन हम मुख्तार हैं कि नुकात अलिफ़ और बे में अलिफ़ बे एक ऐसा ख़त मुस्तकीम खींच लें जिसका कुल मजमूआ 11 नुक्ते हों। फिर बाद उसके हम ये भी इख्तियार रखते हैं कि बमूजिब शक्ल दहम मकाला उला तहरीर इक़लीदस इस ख़त महदूद की तनसीफ़ करें। सो ज़ाहिर है कि इस ख़त के दो टुकड़े बराबर करने से दरमियानी नुक्ता जो परमानो है मुनकसिम हो जाएगा, और यही मतलब था। मासिवा इसके जो शख्स इल्मे नफ्स में से कुछ पढ़ा होगा और दलाइल अदम तजस्सुम रूह उसने देखे होंगे, उस पर साफ खुल जाएगा कि पंडित दयानंद ने इस अपने इतिकाद में ऐसी डबल गलती खाई है जिससे साबित हो गया है कि वो बिल्कुल इल्म रूह से बेगाना और ना आशना है। क्या रूह में जिस्मानी लवाजिम व खवास भी पाए जाते हैं? क्या वो अपने ताल्लुक़ बिल बदन में ताल्लुक़ जिस्मानी से मुशाबे है? क्या वो अपने दखूल और खुरूज में अजसाम की तरज और तरीक पर है? बस जिस हालत में ना जिस्म को रूह से कुछ मुशाबियत है और ना रूह को जिस्म से कुछ ममासलत, तो किस कदर बेसमझी है कि रूह को जिस्म तस्लीम किया जाए और फिर ग़िज़ा की तरह औरतों और दीगर मादा हैवानात को खिलाया जाए। हम हैरान हैं कि ये किस किस्म की बातें वेद में दर्ज हैं और क्यों लोगों ने इन फाश गलतियों को कबूल कर लिया है। अफसोस अफसोस अफसोस। निंदो।